ॐ शांति ॐ शांति गुड मॉर्निंग। आज हम सभी प्यारे बाबा के 14 तारीख के महावाक्यों को सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मैं बच्चों को तीसरा नेत्र देता हूं। दो नेत्र तो हम सबके पास थे, उन नेत्रों से हमने क्या किया, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। सृष्टि को क्या बनाया, सृष्टि को द्वापर और कलयुग से देह अभिमान में आकर कलयुग नरक बनाया। अब भगवान हमको तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिस नेत्र से क्या हो जाएगा, नयनों से बाबा से हम पहले निहाल होंगे, फिर हम इस नयनों से क्या करेंगे, इस दुनिया को निहाल करेंगे। फिर आज बाबा ने बेहद के वैराग की बात कही। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा, मैंने सैंपल एग्जाम्पल आप सबके सामने रखा है। ब्रह्मा में जब बेहद का वैराग आ गया तो क्या किया, सब कुछ तेरा, मेरे का संकल्प, ये मेरा कुछ है ही नहीं, ये हम सब ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मा बाबा क्या है, मिसाल है, सैंपल है। इसीलिए गौ मुख ब्रह्मा मुख गायन क्यों है, इसीलिए तो ब्रह्मा बाबा का गायन है। तो किसी ने हमको पूछा, भाई आप लोगों की संस्था में ब्रह्मा बाबा का फोटो क्यों रखा जाता है, आपके एक गुरु जी है क्या, तो हम लोग क्या कहते हैं, गुरु जी हमारे ये हमारे यूनिवर्सिटी के दी बेस्ट स्टूडेंट है। किसी स्कूल कॉलेज में जाओ तो वहां क्या होता है, जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके फोटोग्राफ्स लगे हुए होते हैं, जो टॉपर होते हैं। तो ब्रह्मा बाबा कौन है, हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कौन मम्मा कौन है, द बेस्ट नंबर वन स्टूडेंट है। इनको देख करके हम फॉलो करते, ये हमारे गुरु जी नहीं है लेकिन हम इनको फॉलो करते। आज बाबा ने यही कहा, बेहद की वैराग वृत्ति माना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। फिर आज बाबा ने खास गीता को लेकर के, अन्य जितने भी धर्म स्थापक आकर के ज्ञान देते हैं तब कोई धर्म का विनाश नहीं होता, भगवान जब आकर के ज्ञान देते हैं सत्य गीता ज्ञान, तब सब धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना इस गीता ज्ञान में है। कल ही मुझे किसी ने सुनाया, कहते जो एयर क्रैश हुआ था उसमें सब कुछ एक गीता थी, वो एज इट इज थी, जली नहीं है कहते, बाकी इंसान जले सामान जले, कहते गीता थी वो जली नहीं थी, ऐसे कैसे थी। देखो आज भी उसमें ताकत कितनी है, भक्ति मार्ग में हम कह सकते हैं। चलिए हम बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। तीसरा नेत्र मिला है तो कहीं भी आंख डूबनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा उनकी निशानी क्या होगी, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है, वे अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, बाबा हमारी यह देह भी नहीं, बाबा कहते जिसको मेरा मेरा कहते नहीं, देह भी नहीं, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है, उनको मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्ट मोहा होंगे, सबसे पहले देह भी नहीं, मोह टूटता जाएगा, नष्ट मोहा, उनकी बुद्धि में रहता कि यहां का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि ये सब हद का है। बेहद का वैराग आ जाने के बाद क्या लगे, सब हद का है, बेहद की चीजें दिखाई देंगी। और हमारे सामने कहा ना, ब्रह्मा बाबा है, फायदे में रहे घाटे में रहे, बेहद का वैरागी सब कुछ तेरा कहने से दोनों चीजें दिख रही है ना, फायदे में रहे घाटे में रहे बाबा। तो बाबा कहते ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं, यह सिवाय गीता के और कोई शास्त्रों में नहीं। सत्यनारायण की कथा में नर से नारायण नहीं बना जाता, नर से नारायण गीता ज्ञान से बना जाता, यह भी बाबा ने बतलाया। कहते हैं मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, यह समझाया था, यह ज्ञान कोई परंपरा से नहीं चलता है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्रादि परंपरा, कोई भी शास्त्रादि परंपरा नहीं चलते, और जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता। क्यों? ड्रामा का बीच का मध्य का काल का समय है, तो विनाश नहीं होता, जो सब खलास हो जाए। भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़ते ही आते हैं, इनका ब्राह्मण धर्म का शास्त्र है ही बल शास्त्र है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में शास्त्र आदि की जरूरत नहीं। बाबा कहते शास्त्र रहता ही नहीं, और धर्म के समय विनाश हो जाता है, और धर्मों में के समय विनाश हो जाता है, होता नहीं है। पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं जो फिर नहीं, अन्य धर्म जब स्थापन होते हैं तब विनाश नहीं होता। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती तब अन्य सभी धर्म विनाश होते, वही चलती आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हमको बाप पढ़ा रहे, बाबा कह रहे दुनिया खत्म होनी है, दिख रहा है ना, सब कुछ आंखों से भी दिखाई दे रहा है। तो अभी बाबा हमको पढ़ा रहे, गायन भी है, एक गीता का ही है। गीता जयंती भी मनाते हैं, वेद जयंती तो है नहीं, भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए। बाकी है रचना, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। वर्षा बाबत से ही मिलता है, चाचा काका मामा आदि से, चाहे कितने भी धनवान हो, बहुत कुछ उनके पास है। हाँ, प्यार में कुछ दे सकते हैं, लेकिन वर्षा जो अधिकार होता है, हर बच्चे के अपने माता पिता पे ही अधिकार होता है। तो बाबा कहते वर्षा बाप से ही मिलता, चाचा काका मामा आदि से तो वर्षा नहीं मिलेगा। अभी यह है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला। यह कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते, बाबा कहते मैं शास्त्र नहीं सुना रहा, मैं ज्ञान दे रहा हूं। कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं, इन सब का सार तुमको समझाता हूं। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं। क्यों कहते हैं बाबा शास्त्रों को पढ़ाई नहीं, चाहे कितनी भी शास्त्र पढ़ लो, एम ऑब्जेक्ट नहीं, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी कंठ कर लो, कितना भी समय लगा लो, लेकिन कुछ बन जाए शास्त्र पढ़ने से एक लक्ष्य को प्राप्त करे, असंभव। पढ़ाई से लक्ष्य पाया जाता, पढ़ाई से प्राप्ति है, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। यह पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो देखो बाबा ने इसीलिए नाम क्या रखा, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जब नाम रखा था उस समय सत्संगों का प्रथा थी, उस समय लोग सब सत्संग सत्संग कहाँ करते थे। ऐसे समय में भगवान ने इस विद्यालय का नाम क्या रखा? ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा। पढ़ाई में पढ़ाने आया हूँ, सत्संग सुनाने नहीं आया हूँ, कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, ये पढ़ाई है, क्योंकि इस पढ़ाई से पद की प्राप्ति होनी है भगवान वाच बच्चों प्रति। फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसे होगा। बच्चे जानते हैं हम बाबा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए। पढ़ाई क्या पढ़ी हमने? हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, रचता को भी जाना रचना को भी जाना, यह और कोई तो समझा न सके सिवाय बाप के। देखो दुनिया की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा बोरिंग होती है, और ये वाली हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको अच्छी लगती है भाई, सबको अच्छी लगती है। दुनिया में हिस्ट्री ज्योग्राफी होते ना, कहते बोरिंग सब्जेक्ट है ये, बहुत इंटरेस्ट से कोई पढ़ता नहीं है। और ये वाली पढ़ाई देखो, हमारी बाबा इतना सुंदर पढ़ाता, हमारा टीचर सबको रोज पढ़ाता हिस्ट्री ज्योग्राफी, रोज अच्छी लगते नहीं लगती? बाबा की पढ़ाई बहुत प्यारी लगती है। इस मुख कमल से सुनाते हैं, यह भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, ब्रह्मा बाबा, जिसको गौ मुख भी कहते हैं, बड़ी माता भी। क्या क्या कहा बाबा ने? कमल मुख है, गौ मुख है, बड़ी माता है, इनके मुख से ज्ञान के वर्षंश निकलते हैं, न कि जल निकलता है। ब्रह्मा मुख से ज्ञान के वर्षंश निकलते, भक्ति मार्ग में गौ मुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, क्या विधि विधान कर्म कांड है, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते। यहाँ माउंट आबू में भी है ना, माउंट में भी गौमुख है। बाबा कहते कितने सीढ़ी उतर करके यहाँ भी जाना पड़ता है, तो कितना दूर दूर तक जाते हैं पानी पीने के लिए। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, यह तो जानते हो। बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं, देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम सबको यह बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। बतलाने वाली बातें हैं, दिखाने वाली बातें हैं? बताने का समय अभी चला गया, अब हमें देख करके हमारे व्यवहार से, हमारी शक्ल से, हमारी सूरत से क्या समझे, इनको पढ़ाने वाला कौन है? इंसान को ऐसा पढ़ाई पढ़ा ही नहीं सकता, इनको पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान है। कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो सत्युग में थोड़े से मनुष्य होते हैं, कलयुग में देखो कितने ढेर मनुष्य है। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कितने ढेर मनुष्य। कई बार लगता है कि सब खाली घर को खाली करके सड़क पे उतर आए हो, लगता है ना कई बार, एयरपोर्ट पे जाओ, स्टेशन पे जाओ, सड़कों पे जाओ, लगता है कि शायद घर सब लोगों ने बंद करके सब सड़कों पे उतर आए होंगे। इतनी जनसंख्या, जहां देखो आबादी आबादी, ढेर मनुष्य, ऊपर का घर क्या हो रहा है? खाली तो हो रहा है। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करे, हम मनुष्य से देवता बन रहे। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। उसमें कौन सा गुण दिखाई देगा विशेष बता दू? कौन सा गुण दिखाई देगा? दैवी गुण कौन सा दिखाई देगा? बाबा के तुम का क्रोध का अंश नहीं होगा। सबसे खतरनाक चीज क्या है? क्रोध का अंश नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो क्या करना चाहिए? आना तो नहीं चाहिए, अब आ गया तो बाबा क्या युक्ति बताते हैं? झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया, बाबा से तुम्हारा कनेक्शन है ना, बाबा क्षमा करना। रियलाइज कर लिया, बाबा को पत्र लिखा, बाबा क्षमा करना, तो बाबा क्या कहेगा? तथास्तु कहेगा बाबा? हाँ बच्चे क्षमा कर लिया, कहेगा नहीं कहेगा? हाँ
नहीं, हाँ या ना? क्षमा करेगा बाबा? नहीं करेगा? करेगा? अच्छा देखो, बाबा कहते, बाप कहेंगे क्षमा आदि नहीं होती। एक कर्म क्षेत्र ऐसा है जो कर्म में आया वो जरूर बांधेगा। विफल तो जो बीज बोया आप उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। बाकी आगे के लिए इसे भूल नहीं करना। जो कर लिया उसका तो क्या हो गया, उस कर्म का तो फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अटेंशन, सावधानी किस बात की, दोबारा हमसे वो कर्म न हो जाए, फिर से न हो जाए। टीचर कोई क्षमा नहीं करते। अगर टीचर क्षमा कर दे तो फिर सारे बच्चे पास हो जाए। तो बाबा कहते रजिस्टर दिखाते हैं, तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो। रोज अपना पोता मेल देखो, चार्ट देखेंगे, पोता मेल देखेंगे तो हमारे मैनर्स का पता पड़ेगा। क्योंकि दूसरा हमसे कोई कहे तो अच्छा लगता है? किसी को अच्छा लगता है भाई दूसरा कोई कहे आपने गुस्सा किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? कभी हमें बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए बाबा क्या करे, खुद देखो, खुद देख करके खुद चेंज करो। किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देह अभिमान बड़ा मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझे तब बाप से लव हो जाए। नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उससे टाइम निकाल सकते हो। भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। एग्जाम्पल दे रहे, जैसे भक्ति के लिए टाइम निकालते हैं, वो भी नौकरी धंधा करने वाले भक्ति करते हैं। ऐसे हमको भी इस ज्ञान योग के लिए टाइम तो निकाल सकते हैं। मीरा कृष्ण की ही याद में रहती थी, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती होगी। अभी तुम बच्चों को, फिर बाबा मुरली के सार में आ रहे, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से, तुम बच्चों का पुरानी दुनिया से विराग है। जानते इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं लेना। बाबा को क्या कहे, बाबा इस पुरानी दुनिया में हम दोबारा जन्म नहीं लेंगे। हमारा जन्म कहाँ हो, सतयुगी दुनिया में हो। दुनिया ही खत्म हो जाती, ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। ये सृष्टि चक्र का और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबर वार है। जिनकी बुद्धि में यह रहता, ऊंचते ऊंचा पति पावन वह हमको पढ़ाते हैं। यह भी तुम भी जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में सारे 84 का चक्र है, स्मृति रहती है। अभी इस नरक में यह अंतिम जन्म है। इनको कहा जाता है बाबा पूरा चक्र, बीच बीच में क्या कराते रहते हैं, चक्कर लगाते, पूरे 84 का चक्र लगाओ। तो चक्र लगा करके देखो ये कहाँ बैठे हुए, कहाँ पहुंच गए। इसको कहा जाता रौ रौ नरक। सिर्फ नरक नहीं, रौ रौ नरक है, बहुत गंध है। इसीलिए सन्यासी घर बार छोड़ करके क्या करते हैं, इस नरक से तंग आकर जंगल में चले जाते। वह हो जाती है शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है। सबको भूलना पड़ता है, ये पुरानी छीछी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। खत्म होनी है, हुई पड़ी है, दो बातें होनी है, हुई पड़ी है। बाबा तो कहते हुई पड़ी है, ये होने की जरूरत ही नहीं, हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर के तैयार होता है तो दिल में आता है ना, यह मकान टूट ही जाएगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी थोड़ी सी देरी, बहुत थोड़ी सी देरी, वो थोड़ी देरी भी अभी मुझे लगता है खत्म होने वाले है ना। बाबा तो कहते थे साकार में थोड़ी सी देरी है, अभी थोड़ी सी देरी का समय भी निकल गया। बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे, यह मकान अभी बन रहा, नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है, तुम्हारी बुद्धि में बेहद की बातें हैं, अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है, यह कुछ भी आखिर काम में नहीं आना। क्यों नहीं दिल लगा रहे? क्योंकि जिसको दिल लगाएंगे वो चीजें क्या हो जाएगी, दुख और धोखा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए बाबा क्या करे, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगा। इससे पहले कभी कहा बाबा ने सतयुग में, कहा दिल नहीं लगाओ? जो दुख और धोखा जिसमें मिलने वाला है, इसीलिए भगवान ने पहले से हमें सावधान दिलाया, बच्चे इससे दिल नहीं लगाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख भोगना पड़ेगा। हम यहाँ से जाना चाहते हैं, बाप भी कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाने, मुझ बाप को और घर को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। दिल लगी तो क्या हो जाएगा, हाँ? पुरानी दुनिया में दिल लगेगी, सजा भी मिलेगी, पद भी जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है, हमने 84 जन्म भोगे, अब बाप को याद करना है, सब विकर्म विनाश होंगे, बाप की मत पर चलना है, तभी श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप है ऊंचे ते ऊंचा, यह भी तुम ही जानते हो, बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं, वह बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर के पढ़ाते हैं। बाबा कहते ये पढ़ाई भी पढ़ो और शरीर निर्वाह अर्थ सब कुछ करो, परंतु परंतु क्या पढ़ो भी, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करो। एक श्रीमत क्या देते हैं बाबा, बच्चे ट्रस्टी होकर के करो। बीच में क्या है, ट्रस्टी। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा, क्या कहा बाबा ने आज, जिनका इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा, वो क्या करेंगे, ब्रह्मा बाबा की तरह क्या करेंगे, अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं, यहाँ से क्या करेंगे, सब डिलीट, सब कुछ यहाँ से हटाएंगे, मेरा कुछ नहीं। बाबा हमारा देह भी, ये भी मेरा शरीर भी किसका है, ये भी मेरा नहीं, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्ट मोहा हो जाना है, यह है बेहद का वैराग। किसको बाबा ने बेहद का वैराग, ये देह भी मेरा नहीं, बुद्धि सब जगत से हटी हुई हो, वह हद का वैराग होता है, बुद्धि में है, हम स्वर्ग में जाकर अपने महल आदि बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हद का है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो। देखो अभी हम लोग भी बैठ करके बाबा के इस बेहद के घर में मुरली सुनते तो हम सबको, सेंटर वालों को क्या लगता है, सेंटर पे तो कितना कुछ भी हो, इतना बड़ा हॉल तो है ही नहीं, यहाँ बाबा के घर में बैठ करके, बेहद में बैठ करके, बेहद के परिवार के साथ, बेहद के हॉल में बैठ करके मुरली सुनने का आनंद मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए, अभी और कोई में भी आंख नहीं डूबती, जो अच्छी चीज दिखाई देगी तो बुरी तरफ जाएगी क्या, बाबा कहते कहीं भी आंख न डूबे, अब तो अपने घर जाना है, कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाए फिर साथ ले जाते हैं। तुम्हारे लिए ये कोई नई पढ़ाई नहीं है, तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं, तुम्हारे में भी नंबर वार है, सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु परंतु क्या, ढेर मनुष्य इमर्ज करो सारी दुनिया में, करोड़ों आत्माएं हैं, उनमें से कितने बैठे हैं यहाँ पे, करोड़ों अरबों संख्या में से उनमें से भी कितने ढेर,
परंतु तुम बच्चे कितने हो, परंतु तुम थोड़े से ही जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते यह ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता हो रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी है रूहानी गवर्नमेंट, हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं। बाबा ने हम सबको दिव्य दृष्टि दी है, दिव्य बुद्धि दी है, उससे क्या दिखाई देगा, पुरानी चीज नहीं दिखाई देगी, दिव्य अलौकिक चीजें दिखाई देगी, श्रेष्ठ चीजें दिखाई देगी, वहां ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राज्य बाप ने ही सिखलाया था, उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी, अनेक धर्मों का विनाश पढ़ाई के साथ। पढ़ाई के साथ संबंध किसका है, लड़ाई का संबंध है। जब जब भगवान ने पढ़ाई सिखाई, पढ़ाई 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 के साथ क्या, जहां 18 अध्याय पूरा हो गया शंखनाद शुरू हो गया। तो पढ़ाई होना माना पढ़ाई के साथ लड़ाई का कनेक्शन है। तो बाबा कहते बाप भी आकर के पढ़ाई पढ़ा रहे तो इसके साथ लड़ाई भी जरूर होगी। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी, तुम भी वही हो। सॉरी, कल्प कल्प तुम भी पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हरेक को अपना करना है, यह है बेहद की पढ़ाई। इस शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे न सके, इतनी ऊंची शिक्षा, इतना बेहद का ज्ञान कोई मनुष्य समझना मुश्किल है, दे क्या सकता है। बाबा का सत्य ज्ञान किसी आम इंसान को समझा, सबके बुद्धि में बैठता है क्या, चाहे कितने भी संसार की डिग्री वाले होंगे, ज्ञान नहीं समझ में आता है। तो समझ ही नहीं सकते तो देंगे क्या। तो एक बाप ये सत्य ज्ञान देने वाला। बाबा ने श्याम सुंदर का भी राज समझाया है, तुम भी समझते हो। अभी हम सुंदर बन रहे हैं, पहले श्याम थे। बाबा कहते क्यों श्याम सुंदर का ज्ञान दिया, ज्ञान है ना, ज्ञान को दर्पण कहा गया। दर्पण में कोई भी देखता है तो फट से माताएं बताओ क्या कर लेते हो, जहां दर्पण दिखाई दिया करते नहीं करते हो, है ना। तो बाबा ने हम सबके सामने ज्ञान का दर्पण देखा। तो ज्ञान दर्पण देख करके क्या चेक करो, हम श्याम से सुंदर कितना बने, लक्ष्य दिया ना, श्याम बने थे हम सुंदर कितना बने, ये बार बार चेक करो। ये दर्पण बार बार बाबा दे रहा है, तुम भी समझते हो अभी हम सुंदर बन रहे हैं, पहले श्याम थे। श्री कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था, सारी राजधानी थी, अकेला कभी नहीं दिखाया। मक्खन चुराता भी था ना, तब भी क्या करता था, झुंड का झुंड ले जाए, चुराने के लिए भी जाता था, तब भी झुंड का झुंड दिखाया। वस्त्र चुराता तो अकेले जाता था, उसमें भी क्या दिखाया, पूरी टोली होती थी, हर कर्म संगठन में दिखाया है। तो बाबा कहते कृष्ण क्योंकि राजधानी है, अकेले को राज्य नहीं कहा जाता, संगठन था तो राजधानी थी ना। अभी तुम समझते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे वही, देखते ना शिविर में कितने ढेर आ रहे हैं, ज्ञान सरोवर में, शिविर में, मानस सरोवर में कितने आते हैं बाबा के घर में, निकलेंगे वही अगली लाइन है। बाबा कहते हैं कौन निकलेगा, जो कल पहले निकले होंगे, पुरुषार्थ कर बहने लेकर के आते, पहुंचा भी देते हैं, फिर भी निकलेंगे वो जो कल पहले जिसके भाग्य में होगा। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है, हम पुरुषार्थ अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते नरक क्या है और स्वर्ग क्या है, कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है, जो सुखी है वो
बड़े बड़े मकानों में बैठे हुए, जिनके पास चार चार गाड़ियां हैं, वो कौन कहाँ है? स्वर्ग में बैठे हुए। जो दुखी है, जो झोपड़पट्टी में रहते, वो दुखी है, नरक में है। अनेक मत मतांतर है, एक घर में भी अनेक मत हो जाती है। बच्चों आदि में मोह की रग है। बाबा बाबा के अपने बच्चों के लिए कह रहा, बच्चों में भी मोह की रग है, वो टूटती नहीं है। मोहवश कुछ समझते थोड़ी है कि हम कैसे रहते हैं। मोह इतना अंधा कर देता है, जानते ही नहीं। जैसे धृतराष्ट्र को क्या दिखाया, महाभारत की लड़ाई का आधार ही मोह के कारण, मोह के वश होकर के क्या अंधा हो गया था। ऐसे अंधापन नहीं था, ये मोह का अंधापन है। तो बाबा कहते पता थोड़ी कि कैसे रहते हैं। पूछते हैं बच्चे की शादी कराए, बाबा से पूछते हैं मोह के वश होकर के। परंतु बच्चों को यह भी लॉ समझाया जाता है, तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ तो नॉलेज ले रहे। फिर बाबा उनसे प्रश्न पूछते हैं, आपको निश्चय है? हाँ कहेंगे। स्वर्ग में चलना चाहते? हाँ बाबा, जरूर स्वर्ग में चलेंगे। नरक जाने वाला है पता है? कहते हाँ बाबा, ये नरक का विनाश होने वाला, स्वर्ग आने वाला है। फिर बाबा से वो बच्चे क्या पूछते हैं, बाबा बच्चों की शादी कराए? खुद को निश्चय है, नरक से स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हैं, और बच्चों को क्या कह रहे, तुम नरक में चले जाओ। तो बच्चे उस बाबा से राय ले रहे, बाबा शादी करे तो फिर क्या कहेंगे, अरे हमने तो बाबा से राय ली ना, हमने दीदियों से राय ली है, हमने ऐसी शादी नहीं की, हमने बड़ों से राय लेकर के किए, है ना? सही बात है, माताएं बताओ, सही बात है ना? दीदियों से हमने पूछा था, बड़ों से हमने पूछा था, शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दीदी करे शादी? देखो बाबा कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दे रहा, ओपनली कह दिया है, नरक का द्वार है। फिर भी कोई पूछता है तो क्या कहेंगे, दूसरी तरफ पूछते उनको नरक में डाले? पूछते तो बाबा कहेंगे जाकर करो, जाकर करो। कहा तो अच्छा, बाबा ने कहा ना शादी करो, इसीलिए हम कर रहे हैं। देखो गुह्य गति को समझो, बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते, इनका मोह है, अब ना करेंगे तो अवज्ञा कर देंगे, हाँ करेंगे तो भी करेंगे, ना करेंगे तब भी करना तो है, मोह के वश होकर के तैयारी तो हो चुकी है। बच्ची की तो करानी है, क्योंकि कन्याओं के लिए माँ बाप की जिम्मेवारी होती। आजकल बच्चे मौका कहाँ देते हैं, देते हैं क्या बताओ माताएं? चाहे बच्चा हो बच्ची हो, माँ बाप को मौका देते हैं शादी कराने करने का? मौका ही नहीं देते, अपने आप ही सारा सेटिंग कर लेते हैं। मम्मी पापा को तो फ्री कर दिया उन्होंने, आज का जमाना तो ऐसे आ गया ना, सब फ्री कर दिया। बच्ची की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती है। बच्चों को नहीं करा सकते, लड़की के लिए फिर भी माँ बाप की जिम्मेवारी होती, परंतु हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, बाबा ने किससे, ब्रह्मा से, इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। बाबा ने सैंपल रखा ब्रह्मा बाबा को। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं, यह है ही झगड़ों की दुनिया। इस दुनिया को एक और नया नाम क्या मिला आज, नरक कहते बाबा, तमो प्रधान दुनिया। आज बाबा ने क्या नाम दिया, झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल। कांटों के जंगल में खुशबू आएगी, कांटे चुभेंगे, क्या होगा भाई? शिकायत लेकर क्या करे दीदी, लड़ाई होती है, झगड़ा। बाबा ने कहा ही झगड़ों की दुनिया, सर्दी के मौसम में सर्दी तो होगी, गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगा। तो बाबा कहते जंगल कांटों की दुनिया में कांटे ही तो चुभेंगे, एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, यह है जंगल। बाप आकर कांटों से फूल बनाते, कोई विरले निकलते हैं, प्रदर्शनी में बल हाँ हाँ करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से कौन सी बातें, ज्ञान की बातें। कहते ना इसलिए दो कान क्यों मिले, एक कान से सुनना दूसरे से इसलिए मिले। हम तो कहते दो कान इसलिए मिले, भगवान के महावाक्य अगर एक कान से छूट जाए, दूसरे से उसको अंदर डालो, जाने नहीं दो ये संगम के अलावा कभी नहीं मिलेगा सौभाग्य बाबा के मां वाक्यों को सुनने का। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना, मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़ी है। इस समय सूरत मनुष्य की भल है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर, परंतु अपने को ऐसे समझते नहीं। तो बाप कहते हैं अपनी रचना को समझाना है। क्या कहा बाबा ने परिवार वालों को बताओ भाई क्या सेवा दी, पहले अपनी रचना को समझाना है। अगर नहीं समझे समझते हैं फिर भगा देना चाहिए, परंतु ताकत चाहिए भगाने की भी ताकत, बुद्धि से हटाने के लिए। बुद्धि मोह के वश होकर, कैसे मोह की रगे जुड़ी भी होती आसानी से हटती नहीं है, तो मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल न सके। यहाँ तो नष्ट मोहा बनना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। अब बाप आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ अंदर ही अंदर। बाबा क्या कहते, अपने को हम सतो प्रधान कैसे बनाए? शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो। भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर से बना रहे। कहते हैं सिर्फ मां में कम याद करो। फिर से ये शब्द बाबा के अलावा कोई बता सकता? फिर से भगवान के अलावा और किसी के मुख से और कोई शब्दों की कॉपी कर भी ले ब्रह्मा कुमारी से, लेकिन ये फिर से शब्द ये कॉपी कोई कर ही नहीं सकता जब तक समझेगा नहीं। तो बाबा कहते मैं फिर से आया हूँ भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। कहते मां में कम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो भाई मुरली सुना अभी सार, बाबा के आज की मुरली का एसेंस क्या है, सार क्या है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, पहली पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं। बाबा कहते हमारा चीज तो छोड़ो, देह भी हमारी नहीं। इनसे मोह तोड़, नष्ट मोहा बनना है। बाबा बीच बीच में सीन सीनरीज ड्रामा में क्या है, ये सीन सीनरीज दिखाई देते हैं, पता पड़ता मेरा तो ये शरीर ही मेरा नहीं है, जिसको मैं मेरा समझा कुछ नहीं है। इसीलिए इनसे मोह तोड़ करके नष्ट मोहा बनना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व दैवी गुण धारण करने, कभी भी ऐसा कोई काम ना हो हमारे रजिस्टर पर दाग लग जाए। तो सर्व दैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। खास बाबा ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना, टीचर्स स्कूलों में होता है, उसमें खास किसको चेक करना है, क्रोध का भूत महाभूत है, इसीलिए इसके वो चेक करना है। आज का वरदान है कहना सोचना करना, तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। कहना सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसीलिए कमजोरियों के मेरेपन को
वह व्यर्थ के खेल को समाप्त करना, कहना सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। ज्ञान सुनना अलग है, ज्ञान का स्वरूप बनना अलग है। आज बाबा ने ज्ञान का स्वरूप किसको कहा? कहना सोचना और करना, तीनों में समानता ही ज्ञान स्वरूप आत्मा की निशानी है। जो ऐसी ज्ञान स्वरूप, ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्म मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे, औरों को बाप समान बनाएंगे, एक ही काम होगा। परमात्म खेल को, परमात्म चरित्र को, परमात्म ज्ञान रत्नों से खेलेंगे और एक बाप को याद करेंगे, बाप से मिलन मनाएंगे, औरों को भी बाप समान बनाने का ही कार्य करेंगे। आज का स्लोगन है, बहुत अच्छा स्लोगन है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। देखो जब जीवन में उमंग उत्साह कम होता है ना, न जाने कितने मन की बीमारियां, तन की बीमारियां निकलने लगती है, इमर्ज होने लगती है। इसीलिए बाबा क्या कहते, सेवाओं का उमंग उत्साह रहेगा, सेवा में बिजी रहेंगे तो तन और मन की छोटी छोटी बीमारियां क्या हो जाएगी, मर्ज होती चली जाएगी। आज का व्यक्ति इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, हमारे इस भट्टी जो चल रही, इसमें कहा था मुख का मौन, मन का मौन और मोबाइल का भी मौन, तीन प्रकार के मौन का संकल्प दिया गया था। तो बाबा भी आज कह रहे, मुख का मौन तो दुनिया में भी बहुत रख लेते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। रियल मौन कौन सा है? मन से व्यर्थ संकल्प का मौन। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। बाबा आज मन के व्यर्थ ट्रैफिक कंट्रोल की बात, जैसे हम लोगों के रोज ट्रैफिक कंट्रोल्स होते हैं, मन के व्यर्थ संकल्पों का ट्रैफिक कंट्रोल का बाबा ने आज होमवर्क दिया है। चलिए आज हम प्यारे मम्मा के विशेषता सुनेंगे। नियमितता के गुण द्वारा दृढ़ता की शक्ति से संपन्न यज्ञ के हर ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को मम्मा ने दृढ़ता से पालन किया। मम्मा का अनुभव सुनते हैं तो हम यही तो सुनते हैं, सवेरे से लेकर रात्रि तक जो बाबा ने दिनचर्या बना करके दी है उसके अकॉर्डिंग मम्मा चलती थी, मम्मा को देखकर और चलते थे। वे नियमित ज्ञान मुरली का अध्ययन करती, दिनचर्या के हर कार्य में वे सदा रेगुलर और पंक्चुअल रही, रेगुलर आती थी, कभी आलस्य और बहानेबाजी नहीं की। शरीर कैसा भी हो लेकिन एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं की। अमृत वेले 2 बजे उठकर एकांत में बैठ तपस्या की, हर श्रीमत का दृढ़ता से पालन किया। हम सबको भी मम्मा के समान यज्ञ की हर दिनचर्या में एक्यूरेट रहना है, रेगुलर और पंक्चुअल बनना है। सिर्फ रेगुलर ही नहीं, रेगुलरिटी के साथ साथ पंक्चुअल भी बनना। ये थे बाबा के महावाक्य। हमने एक सुना था, मम्मा थोड़ी सी क्लास में लेट आई थी, बाहर सीढ़ी पे बैठी थी, तो बाबा ने देखा मम्मा नहीं है तो कहा कि थोड़ा सा मम्मा लेट आई थी इसीलिए अंदर एंटर नहीं किया था। तो इतना रेगुलरिटी भी और पंक्चुअलिटी मम्मा के अंदर थी। ओम शांति।
ओम शांति। एक विशेष सूचना है, आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इसी उपलक्ष्य में एक विशेष विश्व रक्तदाता दिवस, ब्लड डोनर्स
डोनेशन,
और इसी के उपलक्ष्य में शांतिवन के जो मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स है वहां के ग्लोबल ऑडिटोरियम में शाम को 6 बजे एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पिछले वर्ष भर में जिन्होंने भी रक्तदान किया है उन सभी डोनर्स का सम्मान किया जाएगा। तो ऐसे भाई बहने सादर आमंत्रित हैं और उनका वहां सम्मान होगा जिन्होंने पिछले वर्ष भर में रक्तदान किया है, ब्लड डोनेट किया है। तो सभी को निमंत्रण है, सभी अवश्य वहां पहुंचे। और आज भट्टी कल ही शाम को कंप्लीट हो गई है और जो भी भट्टी के भाई बहने हैं आज जाने वाले हैं, सभी जो आज जा रहे हैं जरा हाथ उठाएं, काफी जा रहे हैं, और जो कल जा रहे हैं थोड़े हैं। और दूसरा, आज हमारे बीच में राधा दीदी जी आए, उन्होंने मुरली सुनाई, बाबा के महावाक्य सुनाए, तो हम एक हाथ की ताली से दीदी का अभिवादन करते हैं।
आज मैं भी जा रहे हूँ
जी, आज दीदी जी भी जा रहे हैं। दो भट्टियों का कुशल संचालन आपने किया, मधुबन निवासियों से भी मिले और सबको अपने होने का आने का लाभ पहुंचाया, इसलिए हम मधुबन वालों की तरफ से भी दीदी आपका बहुत बहुत थैंक्स।
दो शब्द बोलूंगी
जी जी जी। और अभी क्लास भी हमारा जल्दी पूरा हुआ है, 10 मिनट पड़ा है, तो दीदी जी जरूर अपने मन के भाव हमारे साथ साझा करें। और उस दिन आपने थोड़े कुछ लाइनों में अनुभव सुनाए, अगर कुछ और भी आप सुना सके तो समय आज है, अवश्य आप सुनाए। और सरला दीदी भी आए हैं, शायद वो भी आप कुछ कहना चाहते हैं। तो पहले आप,
पहले मैं सुनाती हूँ, दो शब्द सुनाती हूँ।
पहले विजय दीदी, सॉरी दीदी जी अपने परिवार के बारे में भी अवश्य बताएं, क्योंकि हम दीदी जी के तीनों बहनों को देखते हैं, राधा दीदी है, विजय दीदी तो मधुबन के कनेक्शन में ही है, नजदीक रहते हैं और हमेशा आते हैं, तो तीनों बहनें और आपका परिवार, वैसे आप साउथ से बिलोंग करते हैं लेकिन कहा आप वहां नॉर्थ में लखनऊ जो यूपी की राजधानी है वहां सेवाएं संभालते हैं, बहुत अच्छा लगता है दीदियों का विस्तार, सेवाएं सब कुछ देख करके। तो पहले हम राधा दीदी जी से सुनेंगे, उसके बाद सरला दीदी भी थैंक्स करना चाहेंगे, आज लास्ट दिन है तो।
ओम शांति। बाबा का बनने के बाद सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली धरनी कौन सी है, सभी बताओ भाई। लंदन जाए, अमेरिका जाए, जर्मन जाए, स्विट्जरलैंड जाए, ऐसा करता है। सबसे ज्यादा हर ब्राह्मण आत्मा को आकर्षित करने वाली धरनी कौन सी है, बाबा की यज्ञ भूमि मधुबन भूमि है। मधुबन का नाम सुनते ही मधुबन की मुरली, मधुबन घर, मधुबन के बाबा, हमें याद आ रहा था बैठे बैठे, यहाँ ही 40 साल पहले हम इसी स्थान पे पहली बार बाबा से अव्यक्त मात पिता से, ब्रह्मा बाबा के तन्मिश बाबा जब आए थे, अव्यक्त पार्ट जब चला था, इसी स्टेज पे बैठ करके बाबा से मिलन मुलाकात की थी। आज बाबा को दिल से मैं धन्यवाद दे रही हूँ, उसी स्टेज पे बाबा ने हमें इतना योग्य बनाया बैठ करके मुरली बाबा के महावाक्यों को सुनाने का। बिल्कुल मैं यहाँ आके बैठते हुए पहला सीन याद आया, बिल्कुल यहाँ बैठे थे, यहाँ हम लोग सामने बैठते थे, बाबा की मुरली चलती थी, बाबा की दृष्टि ने, बाबा की बोल ने, दादियों की पालना ने, आज हमको बाबा ने जो भी बनाया बाबा ने, दादियों ने बनाया है। तो जैसे भाई ने कहा, जन्म तो हमने निमित्त मात्र लखनऊ स्थान, ये कर्नाटक साउथ इंडिया रहा हुआ हो, लेकिन हिसाब निकाला तो उसका दुगना साल हमने यहाँ पे ही, फिर नॉर्थ में ही रह करके सेवाएं की। दादियों को बस यही कहा करते थे, जैसे बाबा का ज्ञान मिला, पर सबसे पहला मैं अनुभव सुनाना चाहिए, पहले दिन पहली बार बाबा के घर में गई, ब्रह्मा बाबा के चित्र को पहली बार देखा, बार बार मम्मी को कहा, मम्मी
ये कौन है हमारा, ये हमें कोई लगता है। उससे पहले मैं सुनाना चाहूंगी, मुझे जो पहला बाबा का परिचय मिला ना हाथ में, एरोप्लेन के द्वारा मिला था। बाबा जो साकार मुरली में याद करता है ना, 78-79 में हुबली में बहुत बड़ा प्रोग्राम, ग्लाइडर से वहां एरोप्लेन से पर्चे गिराए गए थे, तो सबसे पहला हाथ पे, छोटे थे उस समय में, सिर्फ क्या पर्चा पढ़ना नहीं, ऊपर से चीज गिरी हुई है, लपक करके उसको फूलों की पत्तियों के साथ एक पर्चा मिला था। वो पहला अवसर था बाबा का जो पर्चा हमें हाथ में मिला था, तो हमें खुशी होती है कि एरोप्लेन के द्वारा ऊपर से भगवान ने आकर के हमें जन्म दिया है। इस सबसे पहली मुला, पहला पहला ब्रह्मा कुमारी इसको, फिर पहली बार हमने उसी समय 78 में पर्चा मिला, फिर 78 वहां ग्लास हाउस में पहली बार दादी प्रकाशमणि जी को देखा था। शाम का समय था, ग्लासेस में चारों तरफ आप जानते ना शीशे शीशे का होता है, वहां बड़ा प्रोग्राम था, देश विदेश के लोग आए हुए थे। फर्स्ट शाम का समय में दादी यूं बैठी, अभी तक मुझे छवि याद है, ऐसे लाल लाइट गिर रहे, ऐसी देवी स्वरूपा, ऐसे अनुभव किया, ज्ञान कुछ नहीं था, समझ भी नहीं थी, लेकिन पहली मुलाकात, पहले देखने का सौभाग्य मिला। उसके पश्चात योगा सीखने के चक्कर में इस ज्ञान को समझा, और ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते ही पहले बार कहा कि मम्मी को बार बार कहे, मम्मी कौन है हमारा, हमने इनको देखा हुआ, इनको हमने देखा हुआ, कौन लगता है हमारा है, पर बार बार ऐसे सिर को दे, पता नहीं लगता तो पता, समझ में नहीं आ रहा कौन है कौन है। इस तरह से पहले दिन बाबा को जो देखा था वो स्मृतियां याद आ जाती है, तो उसके बाद हमारी यात्रा शुरू हो गई। पीछे मुड़ करके नहीं देखा, दादी चंद्रमणि जी खास हमारे घर आ करके, घर से हम तीन बहनों को लेकर के आई, ला करके बाबा ने दादियों ने यहाँ ट्रेनिंग करवाया। उसके पश्चात हमने भी कहा दादियां जहाँ भेजी कि बेहद की सेवा में, तो बेहद की सेवा का संकल्प लेकर हम तीनों बहनें निकली। एक पहले शुरुआत में हम जयपुर में रहे एक साल के लिए सेवाएं की, फिर 6-7 साल राजस्थान के अन्य अन्य शहरों में किया, फिर उसके बाद विजय बहन जो मेरे साथ वाली बड़ी बहनों हरिद्वार में थी, वहां सेवा की देहरादून आदि, वो राजस्थान आ गई और मैं राजस्थान से बाहर जिस स्थान पे मुझे भेजा गया वहां दादियां रहती थी, उस स्थान को खाली था वो दादी ने शरीर छोड़ने के बाद, तो दादी ने कहा आपको लखनऊ जाना है। तो पहली बार जब दादी ने मुझे कहा कि लखनऊ जाना है, हमने कहा दादी हम जा नहीं सकते क्योंकि हम तो कर्नाटक के, हम हिंदी बोल नहीं पाते हैं, तो वहां जाके करूंगी क्या मैं, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, प्योर हिंदी बोलने वाले, और हिंदी चल भी नहीं पाएगी, प्योर हिंदी बोलने वाले और सेवा नहीं करेंगे तो हम जाके करेंगे क्या। एक साल तक के लिए हम छिप गए थे, उसके बाद मधुबन आए थे शिविर की पार्टी लेकर, तब दादी ने हाथ पकड़ के कहा नहीं तुम्हें जाना है। कहते ना जानी जाननहार भगवान है, तो दादियां भी जानती है, तो दादियों ने हमें निमित्त बनाया, तो उनके ही फलस्वरूप आज जो भी सेवाएं हो रही है बाबा निमित्त बनाकर, तीन दादियों की तपस्या का फल, विशेष हमारी गुलजार दादी जी, सबसे पहले वहां गुलजार दादी जी ने आकर के सेवाएं की, और तीन भगवती दादी, सती दादी, किश्ती दादी, तीन दादियों ने जो तपस्या की, बाकी जितने भी बड़े बड़े यज्ञ के अतिरथी महारथी सब दादियों ने लखनऊ में रह करके सेवाएं की है। अब वर्तमान में उनकी तपस्या का फल निकल रहा है वहां पे, उस तपस्या का फलीभूत होकर के सब जगह गवर्नमेंट में कहेंगे, सेक्रेटरिएट में, सब जगह बाबा की प्रत्यक्षता का समय है, करण करावनहार बाबा करा रहा है। और मुझे ये सौभाग्य मिला 15 दिन पांडव भवन, पहले शुरू में तो रहते थे फ्री थे, अभी जिम्मेवारी संभालने के बाद इतना सुंदर आंगन, बाबा के होली हंसों का झुंड, एक एक पांडव भवन का रतन, विशेष भगवान का चुना हुआ रतन, उन सबसे मिल करके इनका प्यार स्नेह, और हमारी शशि दीदी, शीलू दीदी, उनका भी स्नेह, रोज सवेरे शाम
दोपहर में ब्रह्मा भोजन, बाबा 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 के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता था। ये संगम युग की एक लॉटरी मिली, ये सौभाग्य मिला। समय की समाप्ति के पहले बाबा ने मुझे, मेरे लिए तो एक लॉटरी दे दी है। मैं मधुबन निवासियों का, दीदियों का, बाबा का, सबका दिल से हार्दिक धन्यवाद कहती हूँ। और आप सभी भट्टी वाले होली हंस, इतने अच्छे अच्छे रतन बड़े लगन के साथ आकर के जो भट्टी की, एक एक क्लास में आकर के, समय से आकर के पूरा पूरा फायदा लिया, उन सब के सहयोग से भी मैंने देखा अपनी उन्नति, अपनी स्थिति को एक चार चांद लगाने में, उड़ान भरने में एक सहयोग मिला। दिल से मैं आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ, मधुबन निवासियों का, दीदियों का, और खास हमारी सरला दीदी और उनका सारा ग्रुप सेवा का एक मौका दिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हमारी भट्टी पूरी हुई 10 से लेकर 14 तक। बाबा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि पर आकर हमने बहुत अच्छे अनुभव किए, अच्छी क्लासें की। मधुबन निवासियों ने, सब ने हर प्रकार से हमें सहयोग भी दिया, सेवाएं भी दी, और साथ साथ सबको संतुष्ट रखा। शशि बहन, शीलू दीदी, राधा दीदी, सभी ने बहुत अच्छी तरह से आप सबकी पालना की। इसलिए आप सबकी तरफ से इन सबका बहुत बहुत थैंक्स है, थैंक्स है, थैंक्स है। फिर बाबा जब चांस देगा फिर आकर फिर मिलेंगे। तो आज सभी ने यहां से जाना ही है। जिनकी ट्रेन है वो तो यहां से सीधा जाएंगे, और जिनकी कल ट्रेन है वो रात को कहां रुकेंगे पता है? कहां रुकेंगे? मानसरोवर में। मां प्यारे शांति बन जाएंगे, वो आपको मानसरोवर छोड़ेंगे, फिर कल अपनी अपनी ट्रेनें पकड़ेंगे। लगभग कल सबकी ट्रेन है, इसके बाद को रहने वाला 16 के बाद, हाँ एक रहने वाला नहीं बस। आज सबको ही खाली करना रात तक, क्योंकि शाम रात को इनकी दूसरी पार्टी आने वाली है। आज का सेवा स्थान ऐसे बने हुए हैं, एक पार्टी जाए दूसरी फौरन पहुंचने वाली है, इसलिए समय अनुसार हमें सब कुछ करना। श्री मधुबन निवासियों का बहुत बहुत शुक्रिया है, राधा दीदी जी का बहुत शुक्रिया है, बाकी जितने भी जन सेवादारी हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति,
ओम शांति। माता ही ध्यान देंगी। जो भी शाम को जाने वाले हैं कल, और अभी वो फ्री है तो वो भंडारे में जाकर के अपनी सेवाएं दे, तो वहां से मैसेज आया है। कौन कौन जा सकते हैं हाथ खड़ा करें? नाश्ते के बाद जो भंडारे में सेवा दे सकती है माता ही जाने वाली। अच्छा है, लगभग 10 माताएं, ठीक है। पीछे जहां दीदी यात्रा भोजन बन, यात्रा का भोजन जो बन रहा है ना, तो आपको वहां पूछ लेना है कि जहां यात्रा का भोजन बन रहा है तो हमें वहां सेवा के लिए बुलाया है, तो जो भी फ्री है वो जरूर जाए।
खालीपन को भरने के लिए प्यासी निगाहों से
दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार, छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार, हमें अपना बना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार। पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। पहले तेरे पास छोड़ेंगे ना साथ तेरा, दिल से निकले ये आवाज बैरागी मन है हर्षित, जीवन बन गए कमल समान, छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। जब से आन बसे हो गए हम दुनिया से ऊपर, कभी बुलाते हमें वतन में आप कभी आ जाते उतर, हम दुनिया संसार, छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार, अपना बना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार। छोड़ पुरा